पृष्ठ संख्या 411, अध्याय 27। अध्याय शीर्षक है ईश्वर के अस्तित्व के विपक्ष में तर्क, जो कि जॉन हिक के द्वारा दिया गया है। आर्गुमेंट्स अगेंस्ट एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जॉन हिक। धर्म दर्शन के अंतर्गत ईश्वर प्रत्यय कितना महत्वपूर्ण है, इसका पता इससे चलता है कि ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में अनेक दार्शनिकों ने, जैसे प्राचीन तथा समकालीन, बड़ी तत्परता से विचार किया है। जहां एक ओर विचारकों ने ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में अपना तर्क प्रस्तुत किया है, वहीं दूसरी ओर कुछ विचारकों ने ईश्वर के अनअस्तित्व पर भी विचार किया है, अर्थात ईश्वर के अस्तित्व संबंधी तर्कों की कट आलोचनाएं की है। इतना ही नहीं, कुछ विचारकों ने ईश्वर के अस्तित्व के विपक्ष में भी तर्क प्रस्तुत किया है। ईश्वर के अस्तित्व के विपक्ष में मूल रूप से तीन मतों द्वारा तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। इन मतों से संबंधित विचारकों ने अपने तर्कों द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि ईश्वर का प्रत्यय, जिसे ईश्वरवादी दार्शनिकों ने बड़ी सहजता से स्वीकार किया है और जिसके पक्ष में अनेक तर्कों को प्रस्तुत किया है, सत्य नहीं है। ऐसे तीन मत हैं जिनके आधार पर ईश्वर के अस्तित्व के विपक्ष में तर्क प्रस्तुत किए गए हैं। इनमें से पहला है धर्म का समाज शास्त्रीय सिद्धांत, दूसरा है धर्म के विषय में फ्रायड का मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, और तीसरा है आधुनिक विज्ञान से संबंधित आविष्कार और उनकी चुनौतियां। ईश्वरवादी दार्शनिक जॉन हिक ने अपनी पुस्तक फिलॉसफी ऑफ रिलीजन, चौथा संस्करण, प्रेंटिस हॉल, लंदन में उपर्युक्त तीनों मतों द्वारा प्रस्तुत किए गए ईश्वर के अस्तित्व के पक्ष में तर्कों की विवेचना की है। अब अगला शीर्षक है, पहला समाज शास्त्रीय सिद्धांत और धर्म। यह सिद्धांत 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में फ्रेंच समाज शास्त्रियों द्वारा प्रस्तुत किया गया। विशेष रूप से इस संबंध में फ्रेंच समाज शास्त्री एमिल दुर्खिम का नाम आता है, जिन्होंने इस सिद्धांत का विकास किया है। समाजशास्त्रीय सिद्धांत के संबंध में दुर्खिम के विचार उनकी पुस्तक द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ द रिलीजियस लाइफ, जो कि न्यूयॉर्क के प्रेस से 1965 में प्रसारित हुआ था, में मिलते हैं। दुर्खिम समाजशास्त्रीय सिद्धांत के आधार पर ईश्वर को एक आध्यात्मिक सत्ता के रूप में निरूपित न करके यह कहा है कि यह मनुष्य ही है जिसने ईश्वर की सृष्टि अपने सामाजिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए की है। दुर्खिम ने ईश्वर और धर्म के संबंध में इस सिद्धांत के आधार पर जो कुछ कहा है, उसको निम्न रूपों में प्रस्तुत कर सकते हैं। पृष्ठ संख्या 412, इसमें बिंदु पहला है, अपनी पुस्तक में दुर्खिम ने अपनी प्रमुख समाज शास्त्रीय मान्यताओं का विशद विवेचन किया है। धर्म की व्याख्या में उनका समाज शास्त्रवादी दृष्टिकोण स्पष्ट हुआ है। धर्म की व्याख्या में उन्होंने ज्ञान, विचार, नैतिकता और सामाजिक मूल्य आदि विभिन्न बौद्धिक और आध्यात्मिक विषयों को सामाजिक आधार पर स्पष्ट किया है। दुर्खिम के अनुसार धर्म केवल अलौकिक शक्ति अथवा ईश्वर में विश्वास करना मात्र नहीं है। उनके अनुसार धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और क्रियाओं की संगठित व्यवस्था है। दुर्खिम धर्म को एक सामूहिक वस्तु मानते हैं। यह धर्म विश्वासों और क्रियाओं के योग से बनता है। बिंदु दूसरा है, दुर्खिम के अनुसार समूह जिस कार्य की स्वीकृति देता है, चाहे वह निषिद्ध हो या अपवित्र, धार्मिक या पवित्र की श्रेणी में आ जाता है। उनके अनुसार सामूहिक शक्ति ही अलौकिक या दैवी शक्ति का रूप ले लेती है और समूह ही ईश्वर का प्रतीक हो जाता है। तीसरा है, ईश्वर के विषय में दुर्खिम ऑस्ट्रेलिया के अरुंता जनजात के अध्ययन के आधार पर बताया कि धर्म एक सामूहिक आदर्श है जिसकी उत्पत्ति सामूहिक उत्तेजना से होती है। टोटम अलौकिक या ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक है। टोटम गोत्र है, अतः ईश्वर गोत्र है। गोत्र मानव समूह है, इसलिए समूह ही ईश्वर है। दुर्खिम के अनुसार धर्म का स्रोत समाज है। धार्मिक विचार समाज की विशेषताओं के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। पवित्र अथवा ईश्वर केवल समाज का मानवीकरण है। चौथा है, दुर्खिम समाज को अत्यधिक महत्व देते हुए कहते हैं कि समाज ही ईश्वर है, क्योंकि व्यक्ति का दृष्टिकोण दोनों के प्रति समान होता है। सत्ता तथा नियंत्रण शक्ति के कारण समाज भी मनुष्य के मन में दैवी प्रेरणा जागृत कर सकता है। मनुष्य सदा समूह पर स्वयं को निर्भर समझता है। ईश्वर की भांति समाज भी नैतिक शक्ति रखता है और सदस्यों को आत्म बलिदान के लिए प्रेरित कर सकता है। वास्तव में समाज मानव व्यक्तित्व के उच्चतम और योग्यतम गुणों का स्रोत है। समाज का विचार धर्म की आत्मा है। दुर्खिम के विचार से दैवी शक्ति में समाज की प्रतिछाया और प्रतीकात्मक धारणा से अधिक कुछ नहीं होता। धर्म की उत्पत्ति का मुख्य स्रोत समाज है। बिंदु पांचवा है, जॉन हिक ने दुर्खिम के समाज शास्त्रीय सिद्धांत को सारांश में निम्नलिखित रूप में प्रस्तुत किया है। देवता जिसकी लोग पूजा करते हैं, वह ऐसा काल्पनिक प्राणी है जिसे समाज एक उपकरण के रूप में प्रयोग करता है और समाज इसी के द्वारा व्यक्ति के विचारों तथा व्यवहारों पर नियंत्रण रखता है। मानव समूह ईश्वर के गुणों को समूह में रहने वाले व्यक्तियों के संबंध में प्रयुक्त करता है। इतना ही नहीं, व्यक्तियों के मन में ईश्वर के विचारों को जागृत भी करता है। पृष्ठ संख्या 413, समाज ही वास्तविक परमेश्वर है। ईश्वर की अलौकिक उपस्थिति का भान समाज ही कराता है। सारांश में ईश्वर का उल्लेख एक अति प्राकृतिक सत्ता के रूप में नहीं है और यह भी नहीं है कि वह अलौकिक ईश्वर इस विश्व की रचना करता है। इसके विपरीत दुर्खिम के अनुसार यह मानव प्राणी या मानव समूह ही है जिसने ईश्वर की सृष्टि अपने सामाजिक अस्तित्व को बनाए रखने के लिए की है। मानव समूह ही ईश्वर की सृष्टि करके अपने समाज के अस्तित्व को कायम रखना चाहता है। अब अगला शीर्षक है समीक्षा। धर्म दर्शन के विचारकों ने इस सिद्धांत की अनेक रूपों में कटु आलोचना की है। दुर्खिम के सिद्धांत में निम्नलिखित कठिनाइयों पर जोर दिया गया है। इसमें पहला है, जॉन हिक ने इस सिद्धांत की सबसे महत्वपूर्ण कमी की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया है। उनके अनुसार यह सिद्धांत अंतःप्रज्ञा या इंट्यूशन का, जिसका धार्मिकता की दृष्टि से अत्यधिक महत्व है, विवेचन करने में सफल नहीं है। अंतःप्रज्ञा का जो विस्तार है उस ओर यह सिद्धांत ध्यान नहीं देता। वह अंतःप्रज्ञा ही है जो समय समय पर अनुभव जगत से परे भी चली जाती है और मानव समूह के स्वयं के नैतिक संबंधों को स्वीकार करती है। इस मत की एकेश्वरवादी भी आलोचना करते हैं। उनकी दृष्टि में एकेश्वरवादी के उस सिद्धांत को छोड़ दिया गया है जिस ओर समाजशास्त्रीय सिद्धांत संकेत करता है, अर्थात मानव समूह के दबाव को स्वीकार करता है। वह ईश्वर द्वारा ही होता है, अर्थात ईश्वर स्वयं सभी मनुष्यों से प्रेम करता है और सभी नर नारी को भाई बहन की भांति रहने का आदेश प्रदान करता है। दूसरा है, जॉन हिक ने एक अन्य आलोचना यह भी की है कि दुर्खिम का समाज शास्त्रीय सिद्धांत भविष्य सूचक मनोभावों की नैतिकता का विवेचन नहीं कर सकता। यदि समाज ही नैतिक नियमों को दबाव के रूप में लोगों पर थोपता है तो उन नैतिक पैगंबरों के विषय में क्या कहेंगे जो स्थापित नैतिक नियमों के भी परे जाते हैं तथा अपने साथियों को अपने जीवन पर नैतिकता के नए तथा व्यापक अधिकार को स्वीकार करने के लिए तैयार करता है। हिक का कहना है कि समाज शास्त्रीय सिद्धांत एक गतिहीन या बंद समाज के लिए तो ठीक हो सकता है, किंतु यह उस उन्नत नैतिकता की व्याख्या नहीं कर सकता जिसकी उत्पत्ति किसी पैगंबर या किसी पथ प्रदर्शक की अंतःप्रज्ञा द्वारा हुई है। बिंदु तीसरा है, समाज शास्त्रीय सिद्धांत के अनुसार यदि ईश्वर समाज का ही छद्म वेश है तो फिर कैसे समाज के विरोध में पैगंबर को ईश्वर का सहारा मिल सकता है। किंतु जॉन हिक के अनुसार बहुत सी विषम परिस्थितियों में ईश्वर का सहयोग या सहारा मिलता है। ऐसे उदाहरणों से मनुष्य का इतिहास भरा पड़ा है। जॉन हिक वियतनाम के युद्ध का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि यदि समाज शास्त्रीय सिद्धांत सत्य है तो ईश्वर की सहायता का भाव अनुपस्थित होना चाहिए, किंतु ऐसा नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में ईश्वर का सहारा ही पैगंबरों का संबल होता है। पैगंबरों ने ईश्वर के सानिध्य के बोध को व्यक्त किया है। बिंदु चौथा है, एक आलोचक ने ठीक ही कहा है कि प्रत्यक्ष शक्ति के रूप में समाज को ईश्वर की संज्ञा देकर अगम्य, अनादि, अनंत, सर्वशक्तिमान और कर्मों का फल देने वाले परमात्मा को दुर्खिम ने बोधगम्य धरातल पर लाने का प्रयत्न तो किया है, परंतु समाज को ईश्वर के समस्त लक्षणों से युक्त नहीं किया जा सकता। पृष्ठ संख्या 414। दुर्खिम ने जैसा कि एरन ने कहा है, समाज को एक समाज या समाजों के अर्थ में प्रयोग किया है। अतः प्रत्येक समाज अपने सदस्यों के लिए ही ईश्वर हो सकता है। जिस प्रकार दुर्खिम ने गोत्र का देवता, बिरादरी का देवता और अंत में संपूर्ण जनजाति का एक महादेवता माना है, उस प्रकार उसने संपूर्ण विश्व के समाजों के लिए किसी एक ईश्वर की व्याख्या नहीं की है। इस प्रकार किसी एक समाज से संबंधित ईश्वर को हम सर्वशक्तिमान, सार्वभौमिक और सर्वव्यापक नहीं कह सकते, क्योंकि वह अन्य समाजों को स्वीकार्य नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त ईश्वर को केवल मानव सदस्यों का ही नहीं, प्रकृति, सौरमंडल आदि संपूर्ण चराचर जगत का नियंत्रक और संचालक माना जाता है। कोई समाज सूर्य, चंद्र, सागर, प्रकृति, नक्षत्र आदि का नियंत्रक नहीं है। यदि प्रकृति पर कुछ समाजों ने आंशिक नियंत्रण भी किया है तो वे आधुनिक प्राविधिक ज्ञान विज्ञान से युक्त समाज है, आदिम समाज नहीं। समाज में ईश्वर के कुछ गुण प्रतीत होते हुए भी धार्मिक व्यक्ति ईश्वर के स्थान पर समाज का पूजन अर्चन नहीं कर सकते और न ही विष्णु, शिव अथवा दुर्गा के स्थान पर मंदिरों में समाज की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की जा सकती है। अब बिंदु पांचवा है, दुर्खिम का टोटम वाद उनके अनुसार धर्म तथा ईश्वर की व्याख्या करता है, किंतु यह उचित नहीं प्रतीत होता, क्योंकि दुर्खिम के अनुसार टोटम अधिकतर छोटे छोटे पेड़ पौधे से ही संबंधित होता है, जबकि धर्म में पेड़ पौधों और पशुओं की अपेक्षा सूर्य, चंद्र, अग्नि आदि विशिष्ट शक्ति संपन्न भौगोलिक तत्वों को अधिक देवत्व प्रदान किया जाता है। ईश्वर तो सामूहिक जीवन से अधिक व्यक्तिगत जीवन अर्थात संतों, पैगंबरों आदि महापुरुषों से अधिक संबंधित है, अर्थात ईश्वरत्व का प्रकटन सामूहिक और व्यक्तिगत जीवन दोनों से होता है। केवल मानव समूह को ईश्वर कहना उचित नहीं है। अब अगला शीर्षक है दूसरा, धर्म के विषय में फ्रायड का सिद्धांत या मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत, द फ्रायडियन थ्योरी ऑफ रिलीजन। ईश्वर के अस्तित्व के विपक्ष में दूसरा तर्क फ्रायड अपने मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत द्वारा प्रस्तुत करते हैं। उनके अनुसार ईश्वर का अपने से कोई अस्तित्व नहीं है, ईश्वर जैसी कोई ऐसी सत्ता नहीं है जिसने मनुष्य या इस जगत की सृष्टि की है। फ्रायड के अनुसार तो मनुष्य ने ही ईश्वर को उत्पन्न किया है। जॉन हिक ने कहा है कि फ्रायड, जिन्हें मनोविश्लेषण का जनक कहा जाता है, इनके व्यक्तित्व का उतना ही महत्व है जितना कि गैलीलियो, आइंस्टीन और डार्विन के व्यक्तित्व का है। फ्रायड ने ईश्वर के अस्तित्व के विपक्ष में अपने मत को प्रस्तुत करने के पहले धार्मिक विश्वासों को भ्रम कहा है। फ्रायड के शब्दों में धर्म एक भ्रम है। धर्म की उत्पत्ति मानव की प्रबलतम, प्राचीनतम और महत्वपूर्ण इच्छाओं से हुई है। धर्म को भ्रम कहने का तात्पर्य यह है कि उसका जीवन और संसार की वास्तविकताओं से कोई संबंध नहीं है। फ्रायड के धर्म से संबंधित विचार उनकी प्रसिद्ध पुस्तकों जैसे टोटम एंड टैबू 1913, द फ्यूचर ऑफ एन इल्यूजन 1927, मोजेज एंड मोनोथिज्म 1939, द ईगो एंड द इड 1923 तथा सिविलाइजेशन एंड इट्स डिसकंटेंट्स 1930 आदि में मिलते हैं। पृष्ठ संख्या 415। सारांश में फ्रायड ने धर्म से संबंधित विचारों और क्रियाओं की अपने अचेतन सिद्धांत की व्याख्या से की है। उनके अनुसार धर्म एक सामूहिक भ्रम है या धर्म मानव की सार्वभौमिक क्रिया बाध्यता है। धर्म के द्वारा मनुष्य अपने अचेतन की अतृप्त इच्छाओं की तृप्ति करता है। फ्रायड ईश्वर के विषय में कहते हैं कि ईश्वर पिता का ही प्रतिरूप है। टोटम की पूजा के रूप में धर्म की उत्पत्ति बताते हुए फ्रायड कहते हैं कि टोटम की बलि से आदिम मानव का पिता के प्रति विद्रोह और घृणा के भाव की तृप्ति होती थी। उनके अनुसार धर्म मनोवैज्ञानिक आवश्यकता है। मनुष्य भय और असुरक्षा के कारण जब व्याकुल होता है तब अपने मन में शैशवकालीन पिता के प्रतिरूप ईश्वर की शरण में जाने की आवश्यकता महसूस करता है। पुनः फ्रायड का कहना है कि धर्म मानसिक रोग है। धर्म इच्छा पूर्ति है, अर्थात मनुष्य अपनी इच्छाओं का प्रक्षेपण धर्म और ईश्वर में करके शांति का अनुभव करता है। अपने अचेतन की अवधारणा के आधार पर फ्रायड यह भी कहते हैं कि धर्म वासनाओं की संतुष्टि का माध्यम है। फ्रायड का यह भी मत है कि धर्म काम वासना या लिबिडो का विकृत रूप है। फ्रायड के अनुसार प्रेम भाव काम भाव का ही रूप है। भक्ति में प्रदर्शित यह प्रेम भाव वासना मूलक ही होता है। पूजा प्रार्थना भक्ति तथा ईश्वर प्रेम के द्वारा हमारी दमित काम वासनाएं प्रकट होती हैं, वही धर्म का रूप ग्रहण कर लेती हैं। अब शीर्षक है, ईश्वर पिता का ही प्रतिरूप है। धार्मिक कर्मकांड और भावनाओं की व्याख्या फ्रायड एक विशेष मनोग्रंथि के आधार पर करते हैं, जिसे वे पितृ मनोग्रंथि कहते हैं। इसे फ्रायड के शब्दों में ईडिपस कॉम्प्लेक्स कहा गया है। यह एक यूनानी पौराणिक कथा से लिया गया है। पितृ मनोग्रंथि की अवधारणा के अनुसार मनुष्य अपराध वृत्ति के कारण ईश्वर के समक्ष क्षमा प्रार्थी होता है। मानव की यह परिकल्पना है कि ईश्वर समाज में शुभ और कल्याण की स्थापना करता है और भक्त जनों को कृपा करके संकट और पाप से मुक्त कर देगा। शीर्षक है आलोचना। यहाँ हम जॉन हिक के अनुसार फ्रायड के मत की गई आलोचना का संक्षेप में उल्लेख करेंगे। इसमें पहला है, फ्रायड के सिद्धांत की अनेक लोगों द्वारा आलोचनाएं हुई हैं, किंतु जॉन हिक ने फ्रायड के पितृ मनोग्रंथि की जो आलोचना की है वह महत्वपूर्ण कही जा सकती है। हिक का कहना है कि फ्रायड के सिद्धांत में अनेक ऐसी प्राकल्पनाएं हैं जिन्हें वैज्ञानिक दृष्टि से सत्य नहीं कहा जा सकता। पितृ मनोग्रंथि उन्हीं प्राकल्पनाओं में से एक है जिसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। जॉन हिक कहते हैं कि आदिम काल की खानाबदोश जात की प्राकल्पना, जिसे फ्रायड ने डार्विन तथा रॉबर्टसन स्मिथ ने लिया है, उसे अब मानव वैज्ञानिक सामान्यतः स्वीकार नहीं करते। यही नहीं, फ्रायड के अनेक उत्तराधिकारियों द्वारा पितृ मनोग्रंथि या इडिपस कॉम्प्लेक्स को ऐसा समाधान नहीं माना जाता जिससे सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। दूसरे शब्दों में, पितृ मनोग्रंथि ऐसी कुंजी नहीं है जिससे सभी तालों को खोला जा सके। बिंदु दूसरा है, जॉन हिक ने एक अन्य आलोचना यह की है कि दार्शनिक आलोचकों ने एक अन्य आलोचना यह की है कि फ्रायड का मानसिक परमाणुवाद और नियतत्ववाद निरीक्षण योग्य आंकड़ों का नहीं बल्कि दार्शनिक सिद्धांतों के स्तर का है। पृष्ठ संख्या 416। तीसरा है, हिक ने फ्रायड के पितृ मनोग्रंथि की जो आलोचना की है वह उचित और तर्कसंगत है। इस ग्रंथि के अस्तित्व के लिए फ्रायड ने किसी वैज्ञानिक प्रमाण को प्रस्तुत नहीं किया है। इसके आधार पर जो भी निष्कर्ष निकाले गए हैं उन्हें भी प्रामाणिक नहीं कह सकते। वैज्ञानिकता के अभाव में फ्रायड का यह मत मनगढ़ंत ही साबित होता है। बिंदु चौथा है, जॉन हिक का कहना है कि फ्रायड के सिद्धांत की एक धर्मशास्त्रीय आलोचना की जा सकती है। वह आलोचना यह कि फ्रायड ने हो सकता है एक ऐसी यंत्र रचना या मैकेनिज्म पितृ प्रवृत्ति रूप की हो जिसके द्वारा ईश्वर मनुष्य के मन में देवता के विचार की सृष्टि करता है। इसका आधार यहूदी ईसाई धार्मिक परंपरा को माना जा सकता है, क्योंकि इस परंपरा में कहा गया है कि मनुष्य ईश्वर को, जो स्वर्ग में रहता है, अपना पिता माने। इसी आधार पर कह सकते हैं कि यदि मानव पिता का अपने बच्चों से वैसा ही संबंध है जैसा संबंध ईश्वर का मानवता से है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा कि मानव प्राणी ईश्वर को स्वर्ग में रहने वाला अपना पिता स्वीकार करे। जॉन हिक यह भी आलोचना करते हैं कि समाज शास्त्रीय सिद्धांत की तरह फ्रायड का धर्म विषयक सिद्धांत सत्य हो सकता है, किंतु उसे ऐसा दिखाया नहीं गया है। अब अगला शीर्षक है तीसरा, आधुनिक विज्ञान की चुनौतियाँ। ईश्वर के अस्तित्व के विपक्ष में जॉन हिक ने तीसरा तर्क आधुनिक विज्ञान की प्रमुख और महत्वपूर्ण चुनौतियों को प्रस्तुत किया है। उनके अनुसार आधुनिक समय में वैज्ञानिक ज्ञान के आविष्कार और आश्चर्य में डाल देने वाले कार्य तथा विस्तार ने धार्मिक विश्वास पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा है। विज्ञान की चुनौतियों को पुनर्जागरण या रेनेसा काल में देखा जा सकता है। 14वीं से 16वीं शताब्दी तक साहित्य, कला और विज्ञान के क्षेत्र में नए नए विचारों तथा आविष्कारों का जन्म होने लगा। विशेषकर विज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे प्राणी विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा भौतिक विज्ञान आदि में क्रांतिकारी अनुसंधान हुए। इन अनुसंधानों से युगों से प्रचलित मान्यताएं, धार्मिक विश्वास तथा परंपराएं निराधार सिद्ध होने लगीं। विज्ञान के शोधों और कार्यों द्वारा जो भी प्रगति हुई है उससे यह सिद्ध हुआ है कि अब तक के हमारे विश्वास हमें अंधविश्वास के गर्त में डालते रहे, अब तक के हमारे चिंतन दकियानुसी रहे हैं। विज्ञान के निरीक्षण तथा प्रयोग के कारण ही धर्म ग्रंथों में वर्णित विश्वास मान्यताएं साधार्मिक सिद्धांत विवाद के घेरे में ही नहीं आ गए, असत्य भी सिद्ध हो गए। 15वीं शताब्दी में कॉपरनिकस 1473 से 1543 ईस्वी तक ने यूरोप में पहली बार यह सिद्धांत प्रस्तुत किया कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी तथा सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। इस खोज ने बहुत से धार्मिक विश्वासों को धक्का दिया। इसके कारण बहुत से धार्मिक विश्वासों के प्रति संदेह उत्पन्न हो गया। विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में न्यूटन 1642 से 1727 का नाम विख्यात है। वैज्ञानिक होते हुए भी न्यूटन की आस्था धर्म में कम न थी। उनकी दृढ़ धारणा थी कि ईश्वर ने ही ब्रह्मांड की रचना की है और इसका संचालन करता है। इनके गुरुत्वाकर्षण के नियम का ग्रहों की स्थिति और गति के नियंत्रण और संचालन में महत्वपूर्ण स्थान है। इस नियम से ईश्वर की भूमिका सीमित हो गई। पृष्ठ संख्या 417। आगे चलकर लाप्लास 1749 से 1827 ईस्वी ने बिना ईश्वर के हस्तक्षेप के ही ग्रहों के भ्रमण की व्याख्या की। ग्रहों की अनियमितताओं की व्याख्या बिना ईश्वर के प्राकृतिक नियमों द्वारा संभव है। लाप्लास ने ग्रहों के संचालन में ईश्वर की भूमिका को समाप्त कर दिया। चार्ल्स डार्विन 1809 से 1882 ईस्वी तक ने 19वीं शताब्दी में अपने क्रांतिकारी विकासवादी सिद्धांत द्वारा धार्मिक मतों तथा विश्वासों को गहरा धक्का दिया। उन्होंने इस धार्मिक दृष्टिकोण को आघात पहुंचाया कि ईश्वर ने अपने विशेष उद्देश्य से जगत की सृष्टि की है। डार्विन ने स्पष्ट किया कि ईश्वर के स्थान पर प्राकृतिक चुनाव और योग्यतम की विजय के सिद्धांत के आधार पर प्राणियों और जातियों का विकास हुआ है, किसी ईश्वर की आवश्यकता नहीं है। इस सिद्धांत ने पृथ्वी पर मनुष्य के महत्व को भी धक्का दिया है, क्योंकि मनुष्य का भी विकास उन्हीं जैविक नियमों द्वारा हुआ है। मनुष्य इस सृष्टि में कोई विशेष प्राणी नहीं है। मनुष्य ईश्वर की कोई विशेष रचना नहीं है। इन वैज्ञानिकों की खोजों और अनुसंधानों से यह सिद्ध हो गया कि किसी अति प्राकृतिक सत्ता का अस्तित्व नहीं है। विज्ञान अपने भौतिकवादी दृष्टिकोण से जगत की व्याख्या करके यह सिद्ध कर देता है कि जगत में कोई आध्यात्मिक सत्ता नहीं है। जहाँ तक धर्म ग्रंथों में ब्रह्मांड या सृष्टि से संबंधित वर्णित विचार मिलते हैं, विज्ञान ने उनका पूर्णतः खंडन कर दिया है। जॉन हिक ने बाइबिल में वर्णित ब्रह्मांड का उदाहरण देते हुए लिखा है कि ब्रह्मांड के तीन खंड हैं, आकाश में स्वर्ग, जमीन में नरक तथा पृथ्वी का चक्कर लगाता हुआ सूर्य। आधुनिक ज्ञान जैसे विज्ञान की खोजों से को ध्यान में रखते हुए विश्वसनीय नहीं रह गए हैं। आगे हिक पुनः कहते हैं कि यह बात भी गलत सिद्ध प्रतीत होता है कि विश्व की लगभग 6000 वर्ष पूर्व सृष्टि की गई थी तथा मानव एवं अन्य प्राणी जातियां अपने वर्तमान आकार में ही उसी समय अस्तित्व में आईं। इसको तर्क सम्मत नहीं माना जा सकता। इतना ही नहीं, बाइबिल में उल्लिखित मृत्योत्थान या पुनरुज्जीवन या रिजरेक्शन की स्वीकृति भी समाप्त हो चुकी है। हिक के शब्दों में यह आशा कि भविष्य में कभी मनुष्यों के सड़े गले नष्ट हो चुके शव अपने प्राचीन स्वास्थ्य और आकार में युगों बाद कब अंतिम निर्णय के लिए उठ बैठेंगे, इसकी स्वीकृति भी अब समाप्त हो गई है। विज्ञान ने धर्म ग्रंथों के प्रति विश्वास पर भी चोट किया है। धर्म में आस्था का विशेष महत्व है, किंतु विज्ञान ने आस्था को एक हानि रहित निजी कल्पना का रूप माना है। जॉन हिक इसके विषय में कहते हैं कि यद्यपि विज्ञान ने विशेष रूप से धर्म की बातों को असिद्ध नहीं किया है, किंतु विश्व के बारे में विज्ञान ने इतने तथ्य सामने लाकर रख दिए हैं कि बिना धर्मों की बात का विरोध करते हुए आस्था को अब केवल एक हानि रहित निजी कल्पना की तरह माना जाता है। इसी क्रम में जॉन हिक ने सारांश में यह कहा है कि विज्ञानों ने सामूहिक ढंग से ईश्वर को बीच में बिना लाए प्राकृतिक व्यवस्था की स्वायत्तता को स्थापित कर दिया है, अर्थात प्रकृति का अध्ययन बिना ईश्वर की चर्चा किए ही किया जा सकता है। विज्ञान जिस ब्रह्मांड का अनुसंधान करता है उसे देखकर तो यही कहा जा सकता है कि जैसे किसी ईश्वर का अस्तित्व ही नहीं है। अब अगला शीर्षक है समीक्षा। क्या वास्तव में ईश्वर का अस्तित्व नहीं है? इस प्रश्न के उत्तर में जॉन हिक ने सारांश रूप में यह कहा है कि विज्ञान एक ऐसे ब्रह्मांड का अन्वेषण कर रहे हैं जो ईश्वर प्रदत्त अपनी स्वायत्तता तथा एकता के साथ ईश्वर द्वारा सृजित एवं उसी द्वारा सुरक्षित या पोषित है। दूसरी ओर धार्मिक आस्था के साथ यदि ईश्वर के अस्तित्व के विषय में कहा जाए तो भी ईश्वर के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर सकते। पृष्ठ संख्या 418। जॉन हिक के शब्दों में धार्मिक आस्था के अनुसार ईश्वर ने इस व्यवस्था की सृष्टि एक ऐसे वातावरण के रूप में की जिसमें मानव प्राणी स्वतंत्र तथा उत्तरदायी कर्ता का जीवन यापन करते हुए ईश्वर के साथ एक प्रबंध स्थापित कर सकते हैं। इस धार्मिक दावे पर वैज्ञानिक ज्ञान के प्रभाव के बारे में अधिकतम यही कहा जा सकता है कि यह किसी विशेष विज्ञानों के क्षेत्र में नहीं आता। विज्ञान न तो इसकी पुष्टि कर सकता है और न ही इसका खंडन कर सकता है। अब अगला शीर्षक है ईश्वर का अस्तित्व और चमत्कार। जॉन हिक ने ईश्वर के अस्तित्व के विवाद को हल करने के लिए चमत्कारों का उल्लेख किया है। उनके अनुसार इस धर्मशास्त्रीय दृष्टिकोण से उन चमत्कारिक कहानियों तथा उत्तर दिए गए उन प्रार्थनाओं के जो विवरण प्राप्त हैं उनका क्या महत्व है? ऐसे विवरण प्राचीन समय से लेकर आज तक धर्म ग्रंथों में पड़े हैं। क्या इन चमत्कारों को विज्ञान के क्षेत्र के अंतर्गत रखा जा सकता है या विज्ञान के क्षेत्र के बाहर? हिक का कहना है कि इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर है कि चमत्कार को किस प्रकार परिभाषित करते हैं। या तो इसकी व्याख्या भौतिक या प्राकृतिक नियम के उल्लंघन के रूप में की जाए या धार्मिक रूप में एक असाधारण घटना के रूप में जो ईश्वर के तीव्र ज्ञान को उत्पन्न करती है। यदि चमत्कार को प्राकृतिक नियम के उल्लंघन के रूप में परिभाषित किया जाए या जाना जाए तो चमत्कारों के न होने की घोषणा कर सकते हैं, अर्थात चमत्कार संभव नहीं है। किंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि चमत्कार होते ही नहीं, चूंकि विज्ञान वैज्ञानिक प्रक्रिया पर बल देता है। अतः जब विज्ञान चमत्कार को अस्वीकार करता है तब यह कहा जा सकता है कि बिना आवश्यक या प्रासंगिक साक्ष्यों को स्वीकार किए यह नहीं कहा जा सकता कि जीसस की चमत्कार संबंधी कहानियां असत्य है। जॉन हिक ने ठीक ही कहा है कि वैज्ञानिक दृष्टि से यह असंभव नहीं है कि इस प्रकार की प्रभावशाली तथा असाधारण घटनाएं घटित हों। बटलर ने तो प्रकृति को ईश्वरीय नियम पर आधारित माना है। उनके अनुसार प्रकृति सामान्य नियम के अनुसार चलती है। फिर इसमें ईश्वर की चमत्कारिक मध्यस्थता भी बुद्धि के सामान्य नियम से होती है। सारांश में यह कहा जा सकता है कि आधुनिक ईश्वरीय शास्त्र की धारणा यही है कि जगत ईश्वर के हाथों में है और चमत्कार ईश्वर की इच्छा के प्रमाण स्वरूप है। विज्ञान यह दावा नहीं कर सकता कि वह प्रकृति के सभी नियमों को जानता है, अर्थात विज्ञान प्रकृति के सभी नियमों से परिचित नहीं है। विज्ञान परिकल्पनाओं पर चलता है और विज्ञान की परिकल्पना पर संदेह करें तो विज्ञान का ज्ञान संभव नहीं हो सकता। यह भी कहा जा सकता है कि विज्ञान अपने क्षेत्र का उल्लंघन नहीं कर सकता। उसे कोई अधिकार नहीं कि वह ईश्वर के अस्तित्व और धर्म पर आक्षेप करे। निष्कर्ष के रूप में जॉन हिक का कथन है कि विज्ञान की चुनौती के आधार पर यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि यदि हम ईश्वर के अस्तित्व को निश्चित तौर पर सिद्ध नहीं कर सकते तो हम निश्चित तौर पर ईश्वर के अस्तित्व का खंडन भी नहीं कर सकते। अध्याय 27 समाप्त।